यह इस प्रकार का नाटक में उल्लेख है। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि शकुंतला दुष्यंत के चिंतन में इतनी तल्लीन कि दुर्वासा के आने का पता नहीं चला, तो इसका मतलब उसका मन तो एकाग्र हो गया, दुष्यंत में एकाग्र हो गया, तो क्या हम शकुंतला को बहुत बड़ी योगिनी कहेंगे? नहीं कहेंगे, वह योगिनी नहीं है। मन की एकाग्रता तो है, पर उसे हम अध्यात्म की या योग की एकाग्रता नहीं कहेंगे। तब योग या अध्यात्म की एकाग्रता क्या है कि जिस समय हम मन को मन के ही ऊपर एकाग्र करते हैं, यह समझने की बात है कि जब मन को मन के ही ऊपर एकाग्र किया जाए तब क्या होता है, मन पैना होता है, पैना होकर के अपनी परतों को काटने लगता है, छेदने लगता है, गहराई में उतरता है, और गहराई में जिस समय उतरता है तब उस समय कई प्रकार की अनुभूतियां होती हैं जिन्हें हम योगज अनुभूतियां कहते हैं। जैसे अभी हमारा मन बहुत उथला है और हम मन को एकाग्र करना चाहें तो नहीं होता, उसमें भोथरापन है और इसीलिए वह अपनी परतों को छेद नहीं पाता है। जैसे बचपन में हम लोग खेल करते थे बाबा के आतशी शीशे को लेकर के, जैसे सूरज में चले जाएं और सूरज में जाकर के आतशी शीशे को सूरज की रोशनी में रख देते थे, कपड़ा जल जाता था, कागज जल जाता था, सूखी घास जल जाती थी। अब सूरज की किरण में ताप तो है, अग्नि है, पर वैसे तो वह नहीं जलाती। कब जलाती है? जब उसे हम एकाग्र कर देते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास के द्वारा, और उसके बाद वह मानो कागज को जला देती है, कपड़े को जला देती है। तो ठीक इसी प्रकार मन के भीतर में भी शक्ति है, पर शक्ति को प्रकट करने के लिए एकाग्र करना पड़ेगा, उसके अपने ऊपर एकाग्र करना पड़ेगा। तो जो उसके अपने ऊपर एकाग्र करना है उसी को योग कहते हैं। तो योग की परिभाषा यूं दी जा सकती है कि जिस किसी उपाय से बिखरे हुए मन को संसार के विषयों से समेट करके उसके अपने ऊपर एकाग्र किया जाए उस उपाय को योग कहते हैं या अध्यात्म कहते हैं। और जब ऐसा साधित होता है तब मन में पैनापन आ गया, वही मन फिर छेदने लगता है, अपनी गहराइयों में उतरता जाता है। तो जब छेदते हुए अपनी गहराइयों में उतरता है तो उसे योगज अनुभूतियां कहते हैं, कुंडलनी का जागरण कहते हैं। और एक दिन फिर वही मन अपने को छलांग मार करके पार भी कर जाता है, जिसको शास्त्रों ने अमनी मन की अवस्था कहा है, उसी को निर्विकल्प समाधि कहा है। तो मैं यह बता रहा था कि मन के भीतर में असीम संभावनाएं हैं, कि मन अपने भीतर की सारी बातों को जान भी सकता है और अपने आप को लांघ भी जाता है। इस लांघने को ही हम लोग शास्त्र की भाषा में निर्विकल्प समाधि या तुरीय अवस्था या चतुर्थ अवस्था के नाम से पुकारते हैं। तो हम यह कह रहे थे, जो प्रश्न उठाया था कि संस्कार कैसे होते हैं, यह बाहर का शरीर है, यह तो दिखाई देता है, इसको स्थूल कहते हैं, और भीतर में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, तो सूक्ष्म शरीर में दो शरीर आते हैं, एक को हम कहते हैं कि यह जो सूक्ष्म शरीर मन वाला, और दूसरे को कारण शरीर। तो कारण शरीर भी सूक्ष्म शरीर ही है, पर थोड़ा सा अंतर यह है कि जो प्रारब्धात्मक शरीर है उसको तो हम सूक्ष्म शरीर कह देते हैं, और जो संस्कारों का संचित संस्कारों का खजाना है उसको हम कारण शरीर कह देते हैं। वह अभी फलित तो नहीं हुआ है, वह खजाना मानो बंद है। तो जैसे हमने कहा था कि जैसे मैं हूं, इस समय मैं हूं, इस जीवन में मैंने बहुत से कर्म किए, तो कर्मों के सारे संस्कार जाकर के संचित हैं। कहां संचित हो रहे हैं? खजाने में। उस खजाने का नाम क्या है? उस खजाने का नाम है कारण शरीर। ये जितने भी मैं कर्म कर रहा हूं ये सारे संस्कार जाकर के उस खजाने में संचित होते हैं, और यह जो जीवन मैं जी रहा हूं वह प्रारब्ध के कारण है। तो जो प्रारब्धात्मक शरीर है उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, और जो संस्कारात्मक शरीर है, संस्कारात्मक दोनों हैं, पर जहां पर संस्कार संचित है, जिन संस्कारों को हम खर्चा नहीं करते, तो उसको कहते हैं कारण शरीर। जैसे हम अपने खजाने में दो भाग कर देते हैं, एक भाग में रेजगारी है, रुपया पैसा है, और दूसरा भाग बंद है। इसका मतलब क्या है कि भीतर के भाग को हम छूते नहीं, वह जब कभी लगेगा बहुत तब उसे छुएंगे, और जहां हमको पैसा मिला उसके भीतर में हम डाल देते हैं। तो एक ऐसा खजाना है हमारा जहां से हम निकालते नहीं हैं, हम डालते जाते हैं, पहले का भी है और अभी का भी हम उसी में डाल करके जमा करते हैं। तो जो ऐसा शरीर है उसको कहा जाता है कारण शरीर, और यह जो सूक्ष्म शरीर है वह मानो ऐसा खजाना है जहां से लेकर के हम खर्च करते जाते हैं, यह प्रारब्धात्मक शरीर है। तो इन दोनों को मिलाकर के सामान्यतया मन कह देते हैं, या इसी को कहते हैं मन या लिंग शरीर या कह देते हैं। अब हमने कहा था कि इसमें जो संस्कार उत्पन्न होते हैं तो कैसे होते हैं, यह भी विस्तार से कहा था। हमने कहा था यह जो ईश्वर है उसको अगर कोई वैज्ञानिक नाम दिया जाए तो उसको कंप्यूटर कहा जा सकता है, एक संगणक यंत्र के समान है कंप्यूटर। कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर में आप सुनते हैं कि कोई गड़बड़ी नहीं होती, कंप्यूटर किसी के प्रति मानो किसी प्रकार की तरफदारी नहीं करता, वह पक्षपात नहीं करता, वह तो संगणक यंत्र है कि ठीक ऐसा वह कंप्यूटर है कि हम जो भी कर्म करते हैं उसका वहां पर अंकन हो जाता है। हमने कर्म किया तो कर्म का अंकन किस रूप में होगा, भाव के रूप में। यह भी समझाया था कि कर्म दिखने में समान हो सकता है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति एक विधवा की सहायता करते हैं। अब ये सहायता का जो कार्य है दोनों व्यक्ति कर रहे हैं, कर्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। दोनों व्यक्ति जाते हैं, वह बेचारी विधवा हो गई है, कम उम्र में विधवा हो गई है, कोई देखने वाला उसके लिए नहीं है, चलो बाजार से तरकारी भाजी खरीद करके दे दें, एक साड़ी खरीद करके दे दें, तो दोनों व्यक्ति उसके प्रति समान रूप से सहायता का वर्तन करते हैं, तो क्रिया में तो किसी प्रकार का भेद नहीं। तो क्रिया में भेद तो नहीं है, पर फल किसके अनुसार मिलेगा, भावना के अनुसार। एक व्यक्ति के मन में वासना है और वह जो सेवा कार्य करता दिखाई देता है, वस्तुतः उसके मन में कहीं पर कोई वासना छिपी है और उस वासना को फलीभूत करने के लिए वह सेवा का माध्यम लेता है। और दूसरा व्यक्ति है, उसके मन में कोई वासना नहीं, उसके मन में करुणा है कि वह अकेली है, असहाय है, चलो मैं उसकी सेवा कर दूं। तो अब ये जो दो व्यक्ति हैं दोनों ऊपर से समान रूप से सेवा कार्य करते हैं, पर जो फल मिलेगा भावना के अनुसार। तो इसीलिए यह जो संगणक यंत्र है कंप्यूटर है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती और उससे हम अपना छल भी नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं साधक हूं और मैं उस विधवा की सहायता करने के लिए जा रहा हूं और मेरे गुरुजी मुझसे कहें कि सावधान, तुम जा तो रहे हो पर देखो कहीं पर तुम अपने मन में वासना को प्रश्न नहीं देना, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने आप से तर्क करता हूं, मैं वहां जाता हूं क्या वासना के लिए, नहीं नहीं मैं वासना के लिए नहीं जाता। अगर कहीं मुझे मालूम भी पड़ा कि मेरे मन में वासना है तो मैं जबरदस्ती उसको कहूंगा कि नहीं वासना नहीं है, मैं अपने साथ छल भले कर लूं, मैं अपने मन को समझाने की चेष्टा कर लूं, पर संगणक यंत्र को मैं समझा नहीं सकता, संगणक यंत्र को मैं भुलावा नहीं दे सकता। वह ऐसा अद्भुत कंप्यूटर है कि जिस भाव को लेकर के मैं कर्म करता हूं उसी भाव के अनुसार वह संस्कार वहां अंकित कर देगा, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होगी। और कैसा है, और ऐसा है कि जन्म जन्मांतर से जैसे इसी जन्म में संस्कार उसमें जमा होते आ रहे हैं, मैं भूल जाऊंगा परंतु संगणक यंत्र कभी भूल नहीं करेगा। वह तो बिल्कुल वहां पर जमा खर्च बराबर मेरे सामने हिसाब प्रस्तुत कर देगा, उसमें अद्यतन हिसाब कर देता है, अप टू डेट हिसाब करके रख देता है, उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होती। मैं भले भूल जाऊं, मैं सोचूं कि ऐसा अरे क्या मैंने तो जीवन में अच्छे ही कर्म किए हैं, पर संगणक को पता है कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं कितने बुरे किए हैं, मेरे कर्मों के पीछे का भाव क्या था यह संगणक यंत्र बता देगा। यह विराट कंप्यूटर है जिसमें कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं होती, ऐसा अद्भुत जिसे हम कहेंगे यह शख्स जिसे ईश्वर या जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर कर्म का फल देता है, तब उसे कंप्यूटर के रूप में लेते हैं तो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती, वह कभी कोई भूल नहीं करता है, उसके हिसाब में कभी भूल नहीं होती। मैं अपने को छलने की कोशिश करूं उसको छला नहीं जा सकता और वह बराबर हिसाब रख देता है। इसीलिए तो गीता में कहा है ना, भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन यदि ईश्वर है सबके हृदय में बैठा है, और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, वह मानो यंत्र के द्वारा माया के द्वारा माया पर आरूढ़ होकर के यंत्र के द्वारा सबको चालित कर रहा है, मानो यह क्या है ईश्वर के पास, माने प्रत्येक व्यक्ति की एक पर्सनल फाइल है, व्यक्तिगत मिचल है, उसके पास फाइल है, वहां पर सब कुछ उसके सामने बिल्कुल तरोताजा है। उसको हिसाब करने के लिए हम प्रेरित नहीं कर सकते कि हम कहेंगे ईश्वर बड़ा अन्यायी है, मैंने तो इतना इतनी तपस्या की, इतना सब किया, मैंने तो तेरा इतना नाम लिया। तो भगवान कहते हैं नाम तो लिया पर किस उद्देश्य से लिया, नाम लेना तो दिखाई देता है पर उसके पीछे कौन सा उद्देश्य है, उसके अनुसार तेरे ये खाते में जमा है, अगर तूने मुझे पाने के लिए नाम लिया होगा तो इस खाते में जमा है, अगर तूने धन के लिए, पुत्र के लिए, संतति के लिए या अन्य किसी लाभ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए मेरा नाम लिया होगा तो इस खाते में तेरा जमा है। इसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं होती। जैसा हमने कहा, यह संस्कार है और ये संस्कार सारे जाकर के कारण शरीर के भीतर में संचित होते हैं। और यह जो सूक्ष्म शरीर है, बस सूक्ष्म शरीर प्रारब्ध का बना होता है यह प्रारब्ध। और जिस समय मनुष्य की मृत्यु होती है, स्थूल शरीर पड़ा हुआ है और अंदर में हमने कहा कि सूक्ष्म और कारण ये जितने भी हैं, सूक्ष्म का तो हो गया, सूक्ष्म जो शरीर था उसने तो अपने प्रारब्ध को क्षीण कर दिया, वह तो समाप्त हो गया। तो कारण शरीर में जितने भी संस्कार हैं वे सारे आकर के खड़े हो जाते हैं, उनका वहां पर जमा होता है, घटना होता है। और जो संस्कार उसमें से प्रबल होते हैं वे फिर अगले जन्म के लिए प्रारब्ध बनते हैं और बाकी जितने संस्कार हैं फिर वे कारण शरीर में रह जाते हैं। तो अब ये जो संस्कार प्रबल हुए, ये सूक्ष्म शरीर हमारा बनाते हैं, हमारी भावना जैसी होती है, यदि हमने मनुष्य के अनुसार जीवन में आचरण किया है तो वैसी भावना हमारी बनती है, हमारा रूप वैसा होता है। ये जो योगी हैं, हम कह रहे थे, वे देख लेते हैं, वे सूक्ष्म शरीर को देख लेते हैं। हमारी आंखों में सूक्ष्म शरीर को देखने की क्षमता नहीं, पर ये योगी देख लेते हैं। तो प्रारब्ध के द्वारा मानो सूक्ष्म शरीर का निर्माण हुआ, कारण शरीर बचे हुए संस्कारों से बन गया। अब यह जो सूक्ष्म शरीर बना, कारण शरीर के साथ वह उड़ जाता है, निकल जाता है, यह मनोयंत्र निकल जाता है। इसीलिए चैतन्य का अभाव और इसीलिए प्राणवत्ता का अभाव हो जाता है। यह हमने कहा कि जैसे एक मुर्दा पड़ा है, उसके भीतर में आत्म तत्व तो है या नहीं है? है, उसके भीतर भी आत्मा है, क्योंकि आत्मा सर्वव्यापी है। तो जब आत्मा सर्वव्यापी है तो मुर्दे के भीतर भी आत्मा है। तो फिर क्या कारण है कि अभी कुछ क्षण पहले उसमें चैतन्य दिखता था, उसमें प्राणवत्ता दिखाई देती थी, पर अभी न तो उसमें प्राणवत्ता है न चैतन्य है, ऐसा क्या निकला? तो हम कहते हैं मनोयंत्र निकला, उसके भीतर में मनोयंत्र था। तो मनोयंत्र के कारण उसमें चैतन्य दिखता था, प्राणवत्ता दिखती थी। और हमने पिछली बार समझाया और अन्य प्रवचनों में समझाया कि यह जो आत्म तत्व है, इस आत्म तत्व के दो गुण हैं। दो गुण क्या है? उसमें प्राणवत्ता है, उसके भीतर में चैतन्य है, ये दो धर्म है। पर ये उसमें प्रच्छन्न रहते हैं, प्रच्छन्न रहते, छिपे रहते हैं। कब प्रकट होते हैं? जहां पर मनोयंत्र होता है तो वहां पर ये जो छिपे हुए गुण है आत्मा के प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जहां भी मनोयंत्र होगा वहां पर ये दोनों गुण प्रकट हो जाएंगे। तो जैसे वनस्पति है, वनस्पति में भी चैतन्य दिखाई देता है, प्राणवत्ता दिखाई देती है, तो इसका मतलब है वहां पर भी मनोयंत्र है। और जो प्राणी है वहां पर भी चैतन्य दिखाई देता है, प्राणवत्ता दिखाई देता है, तो वहां पर भी मनोयंत्र है। पर यह जो चैतन्य जो दिखाई देता है वनस्पति में, पेड़ में, पौधे में, तो वहां पर जो चैतन्य है, प्राणवत्ता है, वो जो मनोयंत्र है बहुत ही क्रूड फॉर्म में है, बहुत ही निम्न अवस्था में है, उसका धीरे धीरे विकास होता है और मनुष्य में आकर के उसका पूरा परिपूर्ण विकास हो जाता है। यह भी हमने कहा। और यह भी हमने कहा था कि यह जो मनुष्य योनि है, तो मनुष्य अमीबा से लेकर के मनुष्य योनि तक यह जो विकास का प्रवाह बहता है, विकास की प्रक्रिया आती है, तो यह जो विकास की प्रक्रिया चलती है वह मैकेनिकल होता है, या उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, या तो वह यांत्रिक है या वह जैविक है। इसका मतलब क्या है कि यह जो विकास की प्रक्रिया अमीबा से लेकर के मनुष्य योनि से पूर्व तक है, इसमें जीव का कोई हाथ नहीं, वह केवल प्रकृति के द्वारा विकास होता है। उसमें जीव कहे कि मैं अपने आप को चला लूं या कुछ कर लूं, नहीं होता, यह सब भोग योनियां हैं। तो यह प्रकृति के नियम के अनुसार संचालित होता है, इसीलिए उसको कहा गया मैकेनिकल, इसीलिए उसे कहा गया कि ऑर्गेनिक। इसका मतलब कि वह यांत्रिक है, वह केवल जैविक है, जीव शास्त्र के नियम के अनुसार वह चलता है। स्ट्रगल, जैसे कहा गया डार्विन ने जो बताए थे कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और नेचुरल सिलेक्शन, ये दो जो कारण बताए थे, आजकल भले ही आज का बायोलॉजिस्ट इन दोनों कारणों को पर्याप्त नहीं मानता, अन्य भी कारण वह देता है, परंतु सामान्यतः समझने के लिए इतना पर्याप्त है। तो यहां तक मनुष्य योनि के आते तक उसमें कोई वोल्यूशन नहीं होता, उसमें स्वतंत्र इच्छा नहीं होती, उसमें पुरुषार्थ नहीं होता। पर जो ही यह विकास का क्रम मनुष्य के भीतर में आता है, उसमें वोल्यूशन पैदा होता है, उसमें पुरुषार्थ आ जाता है। तो वही हमने पिछली बार जो प्रश्न उठाए, एक प्रश्न था संस्कार कैसे होते हैं, कि किस प्रकार लगते हैं, तो उसे हमने समझाया कि यह जो कर्म है, विराट कर्म की जो शक्ति है, कर्म का न्याय है, हम कहते हैं कि भगवान ही कर्म का फल प्रदान करते हैं, ईश्वर एक कंप्यूटर के समान है और संस्कार बराबर अंकित होते हैं, यह हमने समझाया, एक प्रश्न का उत्तर दिया। कोई कह सकता है अगर ईश्वर सचमुच संगणक यंत्र के समान है, कंप्यूटर है, तब तो कंप्यूटर में तो बेरहमी होती है, वह तो केवल बस जैसा आया वैसा करता है। तो ये कहते हैं प्रार्थना जो करते हैं, भगवान से प्रार्थना करो वह हमारा संकट दूर कर देंगे, तो इसका मतलब हुआ कि भगवान से प्रार्थना करने का क्या मतलब? अगर वह केवल कंप्यूटर है तो फिर कंप्यूटर होने के नाते वह तो कुछ सुनेगा नहीं, तो फिर उसमें तब्दीली कैसे आएगी? अगर वह हमारे कर्म के फल को बदल नहीं सकता तो फिर ईश्वर की प्रार्थना क्यों करें, ऐसा प्रश्न उठ सकता है। तो उसका उत्तर भी दिया गया है, इसलिए हम प्रार्थना करें कि जब हम प्रार्थना करते हैं उस ईश्वर से, तो ये जो प्रार्थना की तीव्रता है या जो भावना की तीव्रता है, तो यह तीव्रता भी तो आकर के आखिर हमारे संस्कार में ही जुड़ती है। हम तीव्र जब प्रार्थना करते हैं तो उसके द्वारा हमारे संस्कार भी वैसे पड़ते हैं और ये संस्कार बराबर जाकर के उसमें परिवर्तन साधित करते हैं। तो ये जो हम प्रार्थना करते हैं, तो प्रार्थना केवल मौखिक प्रार्थना ना हो, यह हम देख लें। जैसे हम रटी रुटाई प्रार्थना करते हैं, कुछ प्रार्थना हमने रट लिए हैं, या तो संस्कृत की प्रार्थना है, या तो हिंदी की प्रार्थना है, या अपनी किसी भाषा की प्रार्थना है। तो जब हम रटी रुटाई प्रार्थना करते हैं तो उसमें भावना की तीव्रता नहीं होती। आपने देखा होगा, आप प्रार्थना तो कर लेते हैं पर मन या तो रसोई में है या ऑफिस में है, आप प्रार्थना बराबर कर रहे हैं, घंटी भी हिला रहे हैं, जय जगदीश हरे भी कर रहे हैं, पर जगदीश की जय हो या रावण की जय हो ये इसका पता नहीं, मन हमारा भ्रमित हो रहा है। तो रटी रुटाई प्रार्थना में भावना की तीव्रता नहीं होती। तीव्रता कब होती है? जब हम पर विपत्ति आती है, तब क्या आप रटी रुटाई प्रार्थना करते हैं? आप देखिएगा, जब जीवन में विपत्ति के क्षण आते हैं तब हम अपनी भाषा में भगवान के साथ बात करते हैं, कहते हैं प्रभु तुम हमारे संकट दूर करो। रटी रुटाई प्रार्थना हम भूल जाते हैं, हमारे हृदय के किसी अंतरतम प्रदेश से प्रार्थना निकलती है। तो ऐसी जो प्रार्थना है, यह प्रार्थना क्या करती है? यह भी संस्कार वहां पर लाकर के छोड़ देती है। और यह जो तीव्रतम भावना के संस्कार हैं, ये भी तीव्रतम होते हैं और ये भी अनुकूल फल प्रदान करते हैं। इसीलिए जो कहा गया कि अगर ईश्वर को हम कंप्यूटर माने तो प्रार्थना करने से क्या लाभ, उसका यह उत्तर कि प्रार्थना करने से यह लाभ है। और प्रार्थना कैसी हो यह भी आपके समक्ष रखा। अब जो दूसरा प्रश्न था कि ठीक है, अगर यह जो हमारा जीवन है प्रारब्ध के द्वारा है, कि पिछले जन्म में मरने के समय जब मैं पिछले बस मौत मरा, उस समय जो संस्कार खड़े हो गए प्रारब्ध के रूप में अलग हो गए, उसके कारण मुझे यह जीवन मिला, तो प्रारब्ध के कारण जब मिला है तो मैं प्रारब्ध के द्वारा बंध नहीं गया हूं। अगर प्रारब्ध से बंध गया हूं तब फिर इसमें मैं स्वतंत्र इच्छा शक्ति का उपयोग कैसे कर सकता हूं, पुरुषार्थ कैसे प्रकट कर सकता हूं? तो प्रारब्ध में जैसा होगा वैसा मुझे मिलेगा, यह तर्क करते हैं। और इसी को हम कहते हैं भाग्यवादी तर्क, कि भाई जो मेरे भाग्य में होगा वह मुझे मिलेगा। और मनुष्य कितना भी करे, कितना भी खटपट करे, कितनी भी कोशिश करे, वह भाग्य को तो काट नहीं सकता। तो यह सुनने में तो बहुत ठीक लगता है और ऐसा लगता है कि बड़ा तार्किक भी है, युक्तियुक्त है, कि अगर मेरा यह जीवन प्रारब्ध का ही फल हो तब तो मैं इस जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो यहां पर यह निवेदन है कि प्रारब्ध हमारी समस्त क्रियाओं को नियोजित नहीं करता, नियंत्रित नहीं करता। प्रारब्ध ऐसा है जो एक चौखट खड़ी कर देता है, हमारे लिए एक फ्रेमवर्क बना देता है, पर उस फ्रेमवर्क के भीतर में हम कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं। दो उदाहरण इस संदर्भ में देंगे। एक उदाहरण है डॉक्टर राधाकृष्णन का, उनसे पूछा गया इसी प्रश्न पर, उनसे कहा गया कि प्रारब्ध जिसे कहेंगे या डेस्टिनी, प्रारब्ध या भाग्य, ये समानार्थी हैं, तो भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों का अंतर आप कैसे करेंगे, दोनों को एक साथ कैसे मानेंगे? भाग्य को माने तो पुरुषार्थ को नहीं माने, और पुरुषार्थ को स्वीकार करें तो भाग्य को स्वीकार नहीं करेंगे। कहा कि नहीं, डॉक्टर राधाकृष्णन ने उदाहरण दिया कि देखो दोनों होते हैं और दोनों को जीवन में स्थान मिला हुआ है। किस प्रकार से? उन्होंने कहा कि जैसे तुम ताश के पत्ते खेलने के लिए बैठे हो, अब ताश के पत्ते तुम्हारे हाथ में बट करके आए, यह जो तुम्हें ताश के पत्ते मिले हैं यह तो तुम्हारा प्रारब्ध है, यह भाग्य है। अब ये जो मिले हुए पत्ते हैं, इन मिले हुए पत्तों से तुम कैसा खेल खेलोगे, यह तुम्हारे पुरुषार्थ की बात है। इन दोनों को उन्होंने समझा दिया और यह बात बड़ी ठीक मालूम पड़ती है।
सदुपयोग
आपने किया, पुरुषार्थ व्यक्त किया, इच्छा स्वातंत्र प्रकट किया, कर्म किया, तो यह भी जीवन का अटल नियम है कि आप एक अधिक घेरे में स्वतंत्र हो जाते हैं। और इसी प्रकार यदि घास व गाय ठीक ठीक चलती रही ईमानदारी के साथ, तो ऐसा भी समय आ सकता है जब वह चरवाहा आकर के गाय को खोल भी दे, कहे कि ठीक है अब रस्सी की लंबाई यह तो खत्म भी हो गई, अब तुझे घास चरनी है तो जा। तो ठीक इसी प्रकार जिस समय जीव अपनी प्राप्त स्वतंत्रता का सदुपयोग करता है और भगवान को दिखा देता है कि प्रभु आप जितनी स्वतंत्रता देते हैं देख लीजिए मेरे जीवन में उसका सदुपयोग ही हुआ है, ईश्वर ऐसी भी कृपा करते हैं कि उसकी रस्सी खोल देते हैं, वह स्वतंत्र हो जाता है, मुक्त हो जाता है। तो इसलिए प्रारब्ध के द्वारा हम पूरी तरह से बंधे हैं यह ठीक नहीं। जैसे ये जो ज्योतिषी भी हैं जो गणना करते हैं, खगोल शास्त्री हैं, ज्योतिष देखते हैं, चाहे हाथ के द्वारा देखें चाहे वे कुंडली के द्वारा देखें कि हमारी जन्म कुंडली बना करके देखें, तो ये जो हैं ज्योतिषी हैं आखिर ये भी क्या बताते हैं, केवल एक चौखट ही तो बताते हैं, बता देंगे जीवन में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, पर ये भी कहते हैं कि इन घटनाओं में परिवर्तन भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, उसके लिए गुंजाइश बनी हुई है। ज्योतिष शास्त्र में ये जो घटनाएं घटने वाली हैं उनके भी परिवर्तन की संभावनाएं रखी, क्यों, मनुष्य यदि कर्म करे तो, अब भले ही उसका रूप इस प्रकार से, अगर वह पूजा पाठ करे यह करे वह करे वह तो भिन्न भिन्न प्रकार की बात है, पर पूजा पाठ के पीछे में उसकी भाव की तीव्रता ही अधिक है कि आज पूजा पाठ का मतलब हमने समझ लिया कि हमने पुरोहित को बुला लिया, उसे पैसा दे दिया, कहा हमारा जितना खर्चा है बता दो, ये पूजा पाठ हमारे लिए कर दो, यह विकृत रूप है, इससे तो पूजा का फल हमें नहीं मिलेगा, वह तो जो कर रहा है उसको मिलेगा। पूजा पाठ के मतलब है कि उसके पीछे हमारी भावना की कितनी तीव्रता है, तो भावना की जैसी तीव्रता होगी उसके फल का अंकन होगा, वह संस्कार जाकर के चिपकेगा हमारे कारण शरीर में और उसका फल हमें जीवन में बराबर उपलब्ध होगा। इसलिए हमने कहा, क्या कहा, कि यह जो प्रारब्ध है तो हमने पुरुषार्थ कहा, इन दोनों में कोई टक्कर नहीं है, ये दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, और ऐसा नहीं मानना चाहिए कि प्रारब्ध के द्वारा हमारा यह जो जीवन है बिल्कुल नियंत्रित, नहीं, कुछ हद तक नियंत्रित है, सीमित है, पर उसके भीतर में कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि हम उस प्रकार का कर्म करते हैं इच्छा स्वातंत्र लेकर के अपने पुरुषार्थ को व्यक्त करते हैं तो हम प्रारब्ध को बदल दे भी दे सकते हैं, यह भी मान्यता स्वीकार की गई है। शास्त्रों ने कहा है यदि मनुष्य का पुरुषार्थ इतना तगड़ा हो जाए, उसकी भावना इतनी तीव्र हो जाए, तो आखिर यह जो प्रारब्ध है उस प्रारब्ध में भी परिवर्तन होता है। श्री रामकृष्ण से पूछा भक्तों ने कि महाराज क्या प्रारब्ध का फल भी कट जाता है, वे कहते हैं हाँ रे, अगर भावना की तीव्रता हुई प्रारब्ध में भी परिवर्तन होता है। अगर प्रारब्ध में ऐसा लिखा था कि उसका पैर कटेगा, तो अगर उसमें भावना की तीव्रता हुई तो पैर नहीं कटेगा, पर हाँ कांटा उसमें चुप करके रह जाएगा। इसका मतलब कि फल में अंतर तो हो ही गया, उसका पैर कटने वाला था पर उसने ऐसा पुरुषार्थ किया, भावना की ऐसी तीव्रता अपने जीवन में संपादित की कि पैर में कांटा चुप करके रहेगा, पैर कटने से बच जाएगा। तो यह भी मानो ये जो आप तो पुरुषों की वाणियां हैं, तो इन दोनों के संदर्भ में। और तीसरा जो था, तीसरा प्रश्न था वह एक टेक्निकल प्रश्न था कि ठीक है यह जो होता है, जैसे हम कुछ देखते हैं, एक इसमें भी देखते हैं, जैसे कुछ प्रकार की योनियां हैं, वनस्पति योनियां हैं हमने कहा, तो वनस्पति योनियों को जैसे एक टहनी को काट करके गड़ा दें तो वहां पर मानो टहनी लहलहा उठती है, पौधा लहलहा उठता है। तो अब यह तो हम समझ सकते हैं एक बीज को जहां पर बपित किया उससे एक वृक्ष निकला, तो ठीक है एक बीज से एक वृक्ष निकला। अब यह जो एक वृक्ष है उसके भीतर में कोई एक जीव आकर के समाया है, यह बात तो ठीक, पर एक यह जो पौधा लहलहा रहा है से एक टहनी काटी, जिसको हम बेशरम का पौधा कहते हैं जो बहुतायत से मिलता है, एक टहनी काटी उसको हमने गड़ा दी, उसको गड़ा दिया तो उसमें से भी फूल फूटने लगते हैं, तो क्या इतने के भीतर में सब जीव आ गए, यह प्रश्न उठता है। और एक दूसरे प्रकार का जीव होता है जैसे जेली फिश अंग्रेजी में है, या एक प्रकार का कीड़ा होता है, तो आपने यह पढ़ा होगा कि उस वह कीड़ा है, आपने उसको दो में काट दिया, उसके दोनों भाग जीवित रहते हैं, आपने दोनों भागों को फिर दो दो में काट दिया, चार टुकड़े हो गए, अब चारों के चारों ये भाग जीवित हैं, तो अब इसको हम एक जीव माने या इनको चार जीव माने, किस प्रकार से माने, यह एक प्रश्न हमारे सामने आया था जिसको पिछली बार रखा था, यह तीसरा और अंतिम प्रश्न। तो उसका उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है, दो प्रकार से यह है। पहला प्रकार तो यह है कि यह जो अमीबा से लेकर के, जैसे हमने कहा योनियों का जो हिसाब किया, तो जिसे हम कहेंगे कि बायोलॉजी साइंस, तो बायोलॉजी साइंस में भी वनस्पति को दूर कर दिया गया है। जैसे इसको समझने के लिए यो माने कि हमने चार प्रकार के जीव माने हैं, एक तो उद्भिज, दूसरा स्वेदज, तीसरा अंडज और चौथा जरायुज। ये चार प्रकार के जीव हम लोग स्वीकार करते हैं। उद्भिज का मतलब जो जल से निकलता, जो स्वेदज का मतलब जो जल से पैदा होता है, स्वेद कहते हैं जलकण को, पसीने को, तो जो जल से पैदा होता है, जैसे केंचुआ है, केंचुआ जल से पैदा होता है, मिट्टी में रहता है, पर गर्मी होती है तो गर्मी से पैदा होता है, उसको हम स्वेदज कहते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जब गर्मी आने लगती है, विचित्र सी गर्मी, तो उस समय ये कीड़े बहुत आते हैं, ये सब स्वेदज हैं, मानो ये जल निर्मित हैं, वाष्प से निर्मित हो जाते हैं, जो आते हैं पतंगे के रूप में आते हैं, कितने आते हैं और आकर के खत्म हो जाते हैं, उसी समय जन्म लेते हैं और उसमें जन्म लेकर के खत्म हो जाते हैं, इनको कहा गया स्वेदज। ये स्वेद से उत्पन्न होते हैं। दूसरी श्रेणी है जो उद्भिज हैं, मानो जो पृथ्वी से निकलते हैं, तो पृथ्वी से निकलने वाले वनस्पति हैं, पेड़ हैं, जो पृथ्वी के पृथ्वी से निकलते हैं, इनको कहा उद्भिज। तीसरी जो श्रेणी है जीव की, उसको कहा गया है अंडज, जो अंडे से निकलते हैं, और चौथी जरायु, जो गर्भ से निकलते हैं। तो आपने अंडे से भी देखा, आप केंचुआ देखेंगे तो यह तो पृथ्वी से निकलता है, पौधे देखेंगे केंचुआ, जैसे मैंने कहा केंचुआ जो निकलता है जल से निकलता है, पौधे निकलते हैं पृथ्वी से निकलते हैं। अब छोटे छोटे कीड़े भी आप देखेंगे, जैसे यह नन्हा सा चींटा है, चींटियां कितनी दिखाई देती, चींटियां कैसे पैदा होती, अंडे से पैदा होती। आपने चींटियों का अंडा देखा होगा, ये जो चींटियां हैं ये अंडे से पैदा होती हैं, तो अंडे से तो कितने पैदा होते हैं, और फिर जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं। अब ऐसा माना गया है कि यह जो जिसको हमने विकास का शास्त्र कहा कि 128 लाख योनियां बायोलॉजी की दृष्टि से, या 84 लाख योनियां हमारी अपनी भाषा में, तो ये जो योनियां हैं उसमें उन दोनों को नहीं गिना गया, जिसको कहेंगे आप उद्भिज और स्वेदज, इन दोनों को नहीं गिना गया, और गिना गया किसको, अंडज और जरायुज को। यहां पर यह नियम लागू होता है। एक तो यह उत्तर है कि अंडज पर और उसी प्रकार जरायुज पर यह जो नियम है यह लागू होता है। इसका मतलब कि ये जो 128 लाख योनियां बायोलॉजी में गिनी गई, तो ये 128 लाख योनियां केवल अंडज और जरायुज की हैं। वहां पर उद्भिज और स्वेदज वे उनको नहीं मानते, वहां पर वह प्लांट लाइफ कह देते हैं, वेजिटेशन कह देते हैं, वेजिटेटिव लाइफ कह देते हैं, वहां पर उसको नहीं मानते, जिसको हम कहेंगे स्पीसीज या योनिया। यह बायोलॉजी शास्त्र की दृष्टि से उत्तर है। और हमारे यहां भी दो प्रकार के मत हैं। कुछ ने तो यह माना है कि वनस्पति शास्त्र में भी जीव आता है, और यह कहा गया है कि वनस्पति शास्त्र में यह जीव चला जाता है, एक हमारी यह मान्यता है। दूसरी यह मान्यता है कि वनस्पति शास्त्र में जीव नहीं जाता, अगर वह जाता ये जो 84 लाख योनियां कही गई हैं, तो ये जो 84 लाख योनियां हैं वह अंडजों और जरायुजों की हैं। तो अगर हम इसको 84 लाख योनियां इन्हीं दो की माने, तब तो समस्या का उत्तर बहुत आसान है। तब तो बिल्कुल ठीक है कि ठीक है, वह जो विकास का क्रम चल रहा है, वह जो मनोयंत्र आता है, जिसको हमने कहा अमीबा के भीतर में जो मनोयंत्र है जो विकसित हो रहा है इवोल्यूशन की प्रक्रिया से, तो ठीक है वह अंडज, अंडज से फिर जाकर के जरायुज, तो इस प्रकार से यह परिवर्तन का क्रम चलता है। उसमें वह दिक्कत पैदा नहीं होती जिस दिक्कत का उल्लेख हमने किया। एक वनस्पति को हमने काटा और वनस्पति को काट करके लगा दिया और कई वनस्पतियां निकल गई, वह दिक्कत नहीं आती या नहीं आती, तो एक तो वह हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जैसे हमने कहा कि वह जो जैसे केंचुआ टाइप का कि काट दिया, तो वह केंचुओं को भी हमने स्वेदज के अंतर्गत रखा है, इसलिए यह जो स्वेदज हैं यह भी इसमें नहीं आते, इस श्रेणी में नहीं आते। फिर वहां क्या है, तो प्रश्न उठता है, ठीक है आपने यह कहा कि अंडज और जरायुज, इन पर यह जो विकास का क्रम है लागू होता है, विकास का सिद्धांत लागू होता है, और विकास का सिद्धांत वनस्पति पर, स्वेदज पर और उद्भिज पर लागू नहीं होता, पर वहां भी तो चैतन्य दिखता है, वहां पर भी तो हमें प्राणवत्ता दिखाई देती है। पहले की जो बायोलॉजी जीवशास्त्र, उसने तो उनमें चैतन्य स्वीकार नहीं किया, ये तो पहले हमारे जीव शास्त्री थे सर बोस, जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार यह प्रमाणित किया कि इनके भीतर भी प्राण है। जैसे हम अन्य पशुओं को प्राणी कहते हैं, उसी प्रकार ये वनस्पति भी प्राणी है, ऐसा प्रयोग करके दिखाया सर जगदीश चंद्र बोस ने पहली बार। और तब से कुछ जो वनस्पति शास्त्री हैं वनस्पति के भीतर में प्राण को स्वीकार करते हैं, जो जगदीश चंद्र के अनुयायी हैं, पर बाहर की जो बायोलॉजी है, विदेशों की जो बायोलॉजी है, जीव शास्त्र जो है, वे यह स्वीकार नहीं करते। वे तो इतना ही कहते ठीक है चेतना है, चेतना दिखाई देती है, पत्थरों के भीतर में चेतना सुप्त है, और प्लांट लाइफ में वेजिटेटिव वेजिटेशन में वनस्पति में, और जिसको हमने कहा कि वह जो स्वेदज जो जीवन है उसके भीतर में कुछ हलचल दिखाई देती है, पर उसको वे जीवन की प्रक्रिया के भीतर या जिसे हम कहेंगे विकास का क्रम, उस विकास के क्रम में नहीं गिनते। पर आज ऐसे जीव शास्त्री हैं जो उनको भी विकास के अंतर्गत लेते हैं, तो जो लेते हैं उनके लिए समझाना तो बड़ा कठिन काम है, या कठिन है कि एक प्लांट को हम कई टुकड़ों में लगा देते हैं तो कई प्लांट हो गए, तो एक जीव क्या अपने आप को बहुत रूपों में इस प्रकार से व्यक्त कर लेता है? एक कीड़ा है उसके हम 10 टुकड़े करते हैं और 10 टुकड़े जीवित रहते हैं,